अरुणिमा खिड़की के जरिए फार्म हाउस में वापस आई। उसके हाथों में एक पैकेट था जिसमें दवाइयां और मेडिसिन थीं, साथ ही आरती के जख्मों के लिए बैंडेज भी था। इन सबको लेकर जब अरुणिमा आस्तिक के कमरे में आई तो उसने देखा कि आस्तिक फिर से कोने में करवट लेकर बैठा था और उसका गीला टावल, जो अरुणिमा उसके माथे और सीने पर रखकर गई थी, जमीन पर पड़ा हुआ था। आस्तिक की हालत वैसी ही थी। वो जल्दी से आस्तिक के पास गई और उसे सीधा किया। इस बार उसने आस्तिक के ऊपर से सारे कपड़े हटा दिए थे, ब्लैंकेट, शर्ट, यहां तक कि बनियान तक। उसने खिड़की खोलकर बाहर की ताजी हवा अंदर आने दी और फिर दोबारा टावल को गीला करके उसे आस्तिक के ऊपर रख दिया। आस्तिक की सांसें और गहरी होती जा रही थीं, बेहोशी का असर अब भी उस पर था। अरुणिमा ने सबसे पहले उसके जख्मी हाथों को साफ किया, उन पर मरहम लगाकर पट्टी बांधी। आस्तिक के जख्मों को साफ करते वक्त अरुणिमा के हाथ कांप रहे थे। उसने आस्तिक को पहले भी घायल देखा था, लेकिन वो हमेशा इतना स्ट्रांग था कि खुद को संभाल लेता था। लेकिन आज उसने खुद को इतना ज्यादा कैसे घायल कर लिया था? अपनी हालत ऐसी क्यों बना ली थी? जब तक आस्तिक को होश नहीं आया, तब तक अरुणिमा उसे ठंडे पानी की पट्टियां करती रही। करीब 2 घंटे बाद उसने देखा कि आस्तिक की उंगलियां हिल रही थी और उसके होठों में भी हल्की सी हरकत थी। ये देखकर अरुणिमा को कितनी राहत मिली, ये उसके चेहरे की चमक से साफ झलक रहा था। आस्तिक को होश न आने के डर ने उसे अंदर तक डरा दिया था, लेकिन उसकी धड़कनें सामान्य थीं, इसलिए अरुणिमा ने हिम्मत नहीं हारी थी। अरुणिमा धीरे से आस्तिक के करीब आई और उसके माथे को सहलाते हुए कहा, आस्तिक, आस्तिक तुम ठीक हो? तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आस्तिक, होश में आओ, मुझसे बात करो। आस्तिक की सांसें और गहरी हो गई थीं। वो मुंह से तेजी से सांस ले रहा था। उसने बेचैनी से अपना चेहरा इधर उधर करना शुरू कर दिया था। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन पलकों में हरकत हो रही थी और वो तेजी से सांस लेते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। वो धीमे और अधूरी सांसों में कुछ बोल रहा था, इसलिए अरुणिमा को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। ये सुनने के लिए कि वो क्या कह रहा है, अरुणिमा उसके चेहरे के पास अपने कान ले गई और ध्यान से सुनने लगी।
मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा अपना, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं। आस्तिक की ये बातें सुनकर अरुणिमा चौंक गई। भले ही ये शब्द वो बेहोशी में कह रहा था, लेकिन उसके शब्द अरुणिमा को साफ सुनाई दे रहे थे। बेहोशी में ऐसा क्यों कह रहा था? अरुणिमा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। आस्तिक का चेहरा अब भी पीला पड़ा था, उसका बुखार कम नहीं हुआ था। उसने जल्दी से आस्तिक के चेहरे को अपने हाथों से साफ किया और उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर धीरे से कहा, मैं हूँ तुम्हारी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आस्तिक की पलकों की हरकत थम गई थी, उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होती जा रही थी। अरुणिमा के शब्दों ने जैसे उस पर कोई जादू कर दिया था। आस्तिक धीरे धीरे शांत हो रहा था, उसकी बेचैनी कम हो रही थी। भले ही ये शब्द अरुणिमा ने उसे बेहोशी में कहे थे, लेकिन जितना आस्तिक अंदर से टूटा हुआ था, उतनी ही शांति उसे अरुणिमा के शब्दों ने दी थी। वो शब्द उसके लिए किसी जादुई मंत्र से कम नहीं थे कि कोई उसका अपना है, कोई है जो उससे प्यार करता है। आस्तिक को शांत देखकर अरुणिमा को राहत मिली, लेकिन अब बारी थी आरती को दवाई देने की। उसका फीवर अभी भी बहुत तेज था और बिना मेडिसिन के उसका बुखार उतरना मुश्किल था। अरुणिमा ने फीवर की कैप्सूल हाथ में ली और दूसरे हाथ में पानी का ग्लास। वो आस्तिक के सिरहाने बैठ गई। उसने आस्तिक के गालों को पकड़कर उसका चेहरा हल्का ऊपर उठाया और उसके होठों को खोलकर कैप्सूल रख दिया। फिर पानी का ग्लास लेकर वो उसे पिलाने ही वाली थी कि देखा, आस्तिक ने वो कैप्सूल मुंह से बाहर निकाल दिया। तेज बुखार की वजह से शायद वो कैप्सूल निकल नहीं पा रहा था। अरुणिमा ने आस्तिक को वापस लिटा दिया और हैरान रह गई। ऐसे में तो वो उसे दवाई दे ही नहीं पाएगी और बिना दवाई के उसका बुखार कैसे उतरेगा? अरुणिमा परेशान हो गई। अब वो आस्तिक को दवाई कैसे दे? लेकिन देना तो जरूरी था। थोड़ी देर तक परेशानी में इधर उधर टहलने के बाद उसने फिर से दवाई की तरफ देखा और फिर आस्तिक की ओर। कैप्सूल लेकर अरुणिमा ने इसे अपने मुंह में रख लिया और फिर पानी का एक घूंट भी अपने मुंह में डाल लिया। उसके बाद वो अपने चेहरे को आस्तिक के चेहरे के पास लाती है। उसने अपने दोनों हाथों से आस्तिक के गालों को हल्का दबाया, जिससे आस्तिक के होंठ मछली की तरह खुल गए और उसी पल अरुणिमा ने आस्तिक के होठों पर अपने होंठ रख दिए और सारी खुली हुई मेडिसिन उसके मुंह में ट्रांसफर कर दी। लेकिन इस सब में एक और चीज हुई। अरुणिमा का अपना मुंह पूरी तरह कड़वा हो गया था। दवा के खुलने की वजह से उसका पूरा मुंह उस कड़वे स्वाद को झेल रहा था। जब तक आस्तिक ने सारी दवा निकल नहीं ली, तब तक अरुणिमा ने अपने होंठ उसके होठों से नहीं हटाए। जब अरुणिमा की सारी दवाई आस्तिक के मुंह में चली गई और आस्तिक ने एक बूंद भी नहीं छोड़ी, तब कहीं जाकर अरुणिमा को लगा कि अब उसे अपने होंठ हटा लेने चाहिए। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि इस बार अरुणिमा नहीं बल्कि आस्तिक था जिसने उसके होठों को कसकर पकड़ लिया था। अरुणिमा जो आस्तिक को दवा पिलाने के लिए उसे किस कर रही थी, अब आस्तिक उसे गहराई से किस करने लगा था। दवा का कड़वापन खत्म होते ही उसे अरुणिमा के होठों का मीठा एहसास होने लगा था और वो इस एहसास को जाने देना नहीं चाहता था। उसने अपने हाथ अरुणिमा की पीठ पर रख दिए। अरुणिमा की आंखें चौड़ी थीं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसके होठ आस्तिक की पकड़ में थे। फिर जो हुआ, उसने अरुणिमा को अंदर तक हिला दिया। आस्तिक ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर एक झटके में उसके सूट की जिप खोल दी, लेकिन उसने जिप को इतनी जोर से खींचा कि वो पूरी तरह से टूटकर अलग हो गई। अरुणिमा की पीठ अब खुल चुकी थी और आस्तिक अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर फिरा रहा था। अरुणिमा की आंखें डरी हुई थी, वो उससे अलग होना चाहती थी, लेकिन आस्तिक ने उसे जकड़ रखा था। अगले ही पल आस्तिक ने तेज झटके से अरुणिमा को बेड की दूसरी ओर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसके हाथ अभी भी अरुणिमा के शरीर पर घूम रहे थे और अरुणिमा की सांसें तेज हो रही थीं। तेज बुखार में आस्तिक लगभग उसके आधे कपड़े उतार चुका था और अब वो अरुणिमा के ठंडे एहसास को अपने तत्ते शरीर पर महसूस कर रहा था। अरुणिमा उसके लिए बर्फ जैसी राहत बन चुकी थी। भले ही वो अब पूरी तरह बेहोश नहीं था, लेकिन जो हरकतें वो कर रहा था उन्हें देख अरुणिमा सोच रही थी, अगर ये होश में होता तो न जाने कितना वाइल्ड होता। जैसे जैसे आस्तिक के शरीर से पसीना निकल रहा था, वैसे वैसे उसका बुखार कम हो रहा था। शायद दवा असर कर रही थी या फिर अरुणिमा के स्पर्श की ठंडक उसका इलाज बन रही थी, ये बताना मुश्किल था। काफी देर बाद आस्तिक आखिरकार अरुणिमा से अलग हुआ। एक गहरी सांस लेकर वो करवट लेकर दूसरी ओर मुंह कर लेता है। अब जाकर अरुणिमा को थोड़ी राहत मिली। इस इंसान ने तो उसे ठीक से सांस लेने का मौका भी नहीं दिया था। अब जब उसने देखा कि आस्तिक का शरीर अब कम गर्म है और उसकी सांसें सामान्य हो गई हैं, तो उसे सुकून मिला। लेकिन जैसे ही उसने खुद की हालत देखी, वो चौंक गई। उसका सूट फट चुका था, बाल बिखरे हुए थे। उसने गुस्से से एक नजर आस्तिक पर डाली, फिर अपने सूट को देखा। इसमें तो बाहर जाया ही नहीं जा सकता। उसकी नजर बेड के कोने पर पड़े आस्तिक के शर्ट पर पड़ी। उसके पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था। जब आस्तिक उठेगा तब वो उसे समझा देगी कि क्यों उसने उसकी शर्ट पहनी है।
आस्तिक की शर्ट लेकर वो बाथरूम में चली गई। जब वो बाहर आई तो उसने सिर्फ आस्तिक की शर्ट पहन रखी थी, जो उसे बहुत बड़ी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई तंबू पहन रखा हो। शर्ट उसके घुटनों तक आ रही थी और स्लीव्स तो हाथों से बाहर जा रहे थे, जिन्हें उसने मुश्किल से मोड़कर संभाल रखा था।